आप छोड़ सकते हैं। एहराम की हालत में बदन अगर नजिस हो या नजिस हो जाए आगे चलकर, यह एहराम कम से कम आपका 8-10 घंटे तो चलेगा। मस्जिद शजरा मिकात से एहराम पहन के 400 किलोमीटर चल के मक्के आएंगे, तो मक्के में बस आपको खाने काबा पे नहीं उतारेगी, आपकी बिल्डिंग में उतारेगी। बिल्डिंग में जाके कमरों में एडजस्ट होने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, और फिर वो वाली बिल्डिंग जो है हरम से बहुत दूर है, वहां तक जाने में मजीद तो ये 8-10 घंटे आपका एहराम चल रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें कारवाने अबुजर के कुछ लोग हैं जिसकी तफसील नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में आएगी, जिनको कराची से भी एहराम पहनना, मैं भी हूं। तो अब ये जो 10-12 घंटे का एहराम, इस दौरान अगर आपका बदन नजिस हो गया, खासतौर पे सऊदी अरब में रास्ते के जो टॉयलेट्स या वॉशरूम है वो बड़े गंदे होते हैं, हरम के करीब जो वॉशरूम बना है मक्के में भी और मदीने में भी वो बहुत ही अच्छे, लेकिन रास्ते के टॉयलेट, अब बस रास्ते में जगह रुकेगी, आप गए वॉशरूम में और पैर नजिस हो गए, तो बदन अगर नजिस हो जाए एहराम की हालत में या पहले से नजिस, और आपने जरा सुस्ती दिखाई कि मैं गुसल नहीं कर रहा हूं, वाजिब तो नहीं, तो सवाब आपने खोया लेकिन कोई गुनाह तो नहीं किया। तो बदन अगर नजिस था या बदन अगर नजिस हो गया तो एहराम पे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको पाक करना जरूरी नहीं। इसी में दूसरी बात वो ये है कि एहराम जब पहना जाए, अगर कोई खातून उस वक्त नजासत के आलम में है, यानी अपने मंथली पीरियड में, तब सारा काफिला तो मीकात से चला जाएगा मक्का, या अकेले तो नहीं रह सकती मीकात पर पाक होने तक, तो नजासत यानी मंथली पीरियड के आलम में एहराम बिल्कुल पहना जा सकता। खासतौर पर औरत जिसका अपना लिबास एहराम, उसी में एहराम पहनने का मतलब क्या हुआ, उसी में वो मीकात जाएगी पूरे काफिले के साथ, अगर गुस्ल कर सकती है तो इस हालत में गुस्ल एहराम हो सकता है, और चाहे तो छोड़ दे, नमाज नहीं हो सकती पीरियड्स के आलम में, फिर नियत करे तलबिया पढ़े उसका एहराम शुरू होगा। हां वो अपना उम्रे के बाकी वाजिबात नहीं कर सकती जब तक के पाक ना हो, क्योंकि दूसरा ही वाजिब है खाने काबा का तवाफ, काबे के करीब जाना ही हराम है पीरियड्स के आलम में, मगर एहराम वो पहन के काफिले के साथ अपने होटल या बिल्डिंग तक आ जाए, फिर बाद में 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन जितना उनका पाक होने का जमाना बाकी है इतने दिन वो एहराम में रहेंगी। और शायद ये भी एक वजह हो कि मर्द अगर इतने दिन एहराम में रहे तो सबकी निगाहों में आएगा, नुमाया होगा, औरतों का अपना लिबास एहराम है तो चुनाचे जो औरतें एहराम उतार चुकी उनका और जो एहराम नहीं उतारे में उनका लिबास एक ही होता। तो खैर असल मसला बात के वाजिबात का नहीं, असल मसला जब सारा काफिला मीकात से आगे बढ़ रहा है तो इनका क्या करें, बगैर एहराम के मक्के में दाखिल होना जायज नहीं, तो इसी हालत में नियत और तलबिया पढ़ा जा सकता है और एहराम शुरू हो जाएगा। तीसरी बात वो खास इन औरतों के लिए, लेकिन वैसे सबके लिए, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, वो ये है कि कल भी एक बात आई थी कि असल एहराम चादरें नहीं, असल एहराम नियत। तो अब नियत और तलबिया आपने पढ़ ली और अब आप चले, बाद में अगर उमरा पूरा करने से पहले किसी मौके पर एहराम की चादर उतारना चाहे या मसलन आपने एहराम पहन लिया और नियत की और तलबिया पढ़ा, यही मसला औरतों के लिए भी है, लेकिन औरतों के मसले में एक आध टेक्निकल मसला और आता है तो उसको मैं जरा बाद में रखता हूं। आपने एहराम पहना था, लिबास पहना, इसके बाद आपने नियत की, इसी लिबास में नियत के वक्त दोनों चादरें आपके जिस्म पर ठीक ठाक होनी चाहिए, फिर आपने इसी चादर में तलबिया पढ़ा, اب آپ یہ چادریں پہن کے میقات مثلا مدینے سے مکہ آ رہے ہیں، راستے میں کہیں رکے، اب آپ کا دل چاہا گرمی زیادہ لگ رہی ہے، اوپر کی چادر اتار کے آپ نے رکھ دی، آپ کے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑا. احرام صحیح، خاص طور پہ دوسرے حصے میں جب ہم خیموں میں جا کے رہیں گے، اور عرفات کا دن جو ہے بہت گرم دن ہوتا، پرانے حاجیوں کی تصویریں ان کے البم میں دیکھیں تو قافلے میں اعمال ہو رہے ہیں، آدھے لوگوں کے اوپر کے احرام اترے، جائز. اسی طرح سے آپ کسی وجہ سے نیچے کی چادر بھی اتارنا چاہتے ہیں، اب لوگوں کے سامنے تو نہیں، آپ اپنے کمرے میں گئے، آپ کو واش روم میں جانا، اب آپ کو نجاست سے ڈر لگ رہا ہے، تو آپ کمرے میں اکیلے، کمرہ لاک کیا آپ نے، چادریں وہیں کمرے میں اتاری، اور اگر اٹیچ بات ہو تو آپ گئے اور اس کے بعد یہ چادریں پہن کے آ گئے، کوئی حرج نہیں. اب سنیے ایک مسئلہ جو ذرا بھی لاپرواہی سے اگر آپ نے سنا تھا پرانا مسئلہ تو ٹکراؤ نظر آئے گا. احرام کی حالت میں بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں، لیکن احرام کی چادروں کا پاک رہنا ضروری، پہنتے وقت بھی ان کو پاک ہونا چاہیے. پورے عمرہ مکمل ہونے تک، پورے واجبات تک اس کو پاک رہنا چاہیے. چنانچہ اگر پیر پہ نجاست لگ گئی، آپ نے پیر کو پاک نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، احرام کے نچلے حصے پہ نجاست لگ گئی، اس کو پاک کرنا واجب. البتہ پاک کرنے کے تین طریقے ہیں، اور جیسا کہ کل میں نے اشارہ کیا کہ یہ کہیں کہیں تو مجبوری میں تیسرے طریقے ہی کی ضرورت پڑتی. اچھا، یہ مسئلہ میں مردوں کی چادر دکھا کے پڑھ رہا ہوں، یہی مسئلہ عورتوں کا، چاہے ان کی چادر ہو یا مثلا انہوں نے شلوار پہنی ہوئی ہے، وہ نجس ہو گئی. تو یہی مسئلہ کہ سب تین طریقے ہیں پاک کرنے کے. فوراً پاک کرنا واجب، لفظ فوراً پہ توجہ رہے، خالی یہ نہیں ہے پاک کر لیں گے مکہ پہنچ کر، فوراً. تو نمبر ایک تو جو سب سے واضح بات ہے، پانی ڈال کے پاک کر لیں. نمبر دو، دوسرا طریقہ جو ذرا کم پیش آتا ہے لیکن کبھی کبھی، بجائے پاک کرنے کے اگر بہت چھوٹا سا کوئی حصہ نجس ہے، کینچی سے اس کو کاٹ دیں. اس میں یہ ہے کہ احرام بہت چھوٹا نہ رہ جائے، تو یہ اسی وقت ہوگا جب بہت چھوٹا سا کوئی حصہ نجس ہوا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چادر کو پاک نہیں کرے، چادر بدل لے. اسی لیے کاروان ابو ذر کی ہر نس میں لکھا ہوگا، دو احرام، ایک پہن کے جائیے، ایک اپنے ساتھ احتیاطاً لے چلے. احتیاط کس چیز کا نام؟ کہ اگر وہ جو پہنا ہوا احرام ہے وہ نجس ہو گئے، تو جس نیت سے آپ گاڑی میں ایک اسپیئر ویل رکھتے ہیں، تو وہ اسپیئر احرام ہے کہ اگر نجس ہو گیا، پاک کرنے کا یا وقت نہیں ہے یا ممکن ہی نہیں ہو پا رہا. تیسرا راستہ ہے کہ آپ پاک کرنے کے چکر میں ہی نہیں پڑے، اس چادر کو کھول کے دوسری چادر پہن. جو اسپیئر احرام ہے پورا وہ نہیں پہننا، ایک چادر نجس ہوئی ایک چادر بدل. اور یہ تینوں آپ کا آپشن، یعنی اگر آپ پانی ڈال کے پاک بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ چاہیں تو اس جھنجٹ میں نہ پڑیں اور چادر بدلیں. یہی مسئلہ خواتین کے اوپر کی چادر کا ہے اور جو لباس انہوں نے پہنا ہوا. تو اب اس مسئلے میں پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ جن چادروں میں آپ نے احرام کی نیت کی، اس چادر کو اتارا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے. اور ایک بات جو میں خاص اس لیے بتا رہا ہوں کہ نئے آدمی یہ بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، مردوں کے لیے وہ یہ کہ جو آپ نے احرام پہنا ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ احرام کو نجس ہونے سے بچانا ہے. اور زیادہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ واش روم وغیرہ جائیں گے، نیچے کی چادر نجس ہو، نیچے کی چادر کم نجس ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ احرام پہن کے اس طرح بل دیتے ہیں تو نیچے کی چادر کافی اوپر آ جاتی ہے، زیادہ نجس ہوتی ہے اوپر کی چادر. یہ اوپر کی چادر ہے، جب آپ واش روم میں جاتے ہیں ذرا بھی جھکتے ہیں، یہ والی چادر پانی سے یا پیشاب سے ٹکراتی ہے، نیچے والی نہیں. ادھر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، ادھر توجہ ہوتی. यहां जो लिबास आप पहनते हैं इसमें शर्ट के नजिस होने का चांस कम है, पैंट के नजिस होने का चांस ज्यादा है, वहां पे उल्टा होगा। तो बी केयरफुल कि ऊपर वाली चादर को गौर कीजिए, और इसी ज्यादा अच्छा होता है कि ऊपर की चादर उतार कर ही आप वॉशरूम में जाएं जिसकी शरण इजाजत है। खैर, मसला ये आ गया कि हराम में बदन आपका नजिस हो तो उसको पाक करना वाजिब नहीं, वो वाजिब होगा जब आप दूसरा वाजिब तवाफ करने जाएंगे, तवाफ के लिए आपका बदन पाक होना चाहिए। लेकिन एहराम तो अगर आपने मगरिब इशा के बाद 7 बजे पहना तो तवाफ तो करेंगे जाके सुबह को ही 5 बजे, इस दौरान अगर जिस्म नजिस है तो उसको फौरन पाक करना जरूरी नहीं, चादरें नजिस नहीं होना चाहिए, चाहे मर्दों की ये चादरें हों और चाहे खवातीन की अपनी चादर या अपना लिबास। अब आइए 2 मसले खवातीन से रिलेटेड जो चार्ट नंबर 4 चौथा चार्ट, इसके अंदर 2 मसले आने वाले हैं, लेकिन मैं इसको जरा पहले बता रहा हूं, और वो सिर्फ इसलिए कि ये जो बात चल रही है इहराम की चादर उतारी जा सकती है, बदली जा सकती है, और उतारी जा सकती है बगैर किसी मकसद के। अब मसलन अगर खवातीन अपने कमरों में गई होटल में, ऐलान होगा 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद हम उमरा करेंगे, अब 5 घंटे ये चादर पहन के अपने कमरे में बैठना जरूरी नहीं, अगर वहां सिर्फ महरम रिश्तेदार है या सिर्फ लेडीज का कमरा तो ये चादर उतार के बाल खोल के एक औरत बैठ सकती है जरा इजी होकर। अब इसके अंदर 2 मसले आते हैं, मसले बहुत सारे हैं लेकिन चादर उतारने के हवाले से 2 मसले। अभी अनकरीब हम इस चार्ट पे जाएंगे और पूरी कोशिश ये करना है कि चार्ट आज कंप्लीट हो जाए। औरतों के लिए 2 मसले ऐसे हैं जो इस चादर को उतारने में पेश आते हैं, जो मर्दों को पेश नहीं आते, और उसकी वजह यह है कि मर्दों की चादर जो है वो पूरी खुली खुली होती है, उसको तो खाली उन्होंने उठा के रख दिया। इहराम की हालत में औरत के लिए अपना चेहरा छुपाना हराम, ये मसला तो इतना मशहूर है, इतना मशहूर, जितनी बेहिजाब औरतें वो इसी मसले को तो फायदा उठाती। ये देखिए हमारे मौलवी मुल्ला हिजाब हिजाब हिजाब, हज में कौन सा हिजाब होता है, तो ये मसला तो हर एक को याद है, बल्कि जितनी अल्ट्रा मॉड औरतें होंगी उनको ज्यादा याद है। तो अब खैर उनकी बात तो छोड़िए, बात हो रही है हमारी खवातीन की कि उनको पता है कि इहराम की हालत में चेहरा छुपाना हराम है औरत के लिए, लेकिन ये चादर जो सर के ऊपर है, जब ये चादर, बच्चा मिल जाएगा नहीं, अच्छा कहीं से ढूंढ के ले आइए, अच्छा अब ये चादर, वैसे तो जरूरत नहीं है इतनी, जरा मेरे लिए अजीब सा लगेगा वरना, अब ये चादर जब उतारी जाएगी, रहने दे बच्चे को, चादर उतारी जाएगी तो चेहरे के ऊपर से गुजरेगी, लामोहला चेहरा छुपेगा। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, उसमें वक्त भी ज्यादा लगेगा। चादर जो सर के ऊपर से उतारी जाएगी, जब ये चादर उतारी जाएगी तो आप देखेंगी कि चादर का पीछे का सारा हिस्सा चेहरे के ऊपर से आएगा, चाहे आप इसको उल्टा उतारें चाहे सीधा उतारें, एहराम की हालत में तो चेहरा छुपाना हराम। अब ये 2 सवाल हैं, उसी को पढ़ देता हूं ताकि वक्त भी कम लगे बात भी आसान। मराजे कराम खुसूसन आगे सिस्तानी की तो किताब में भी छपा हुआ सवाल पूछा गया कि औरत के लिए एहराम में चेहरा छुपाना हराम है, लेकिन चादर उतारते वक्त अगर चेहरा छुप जाए तो क्या हुक्म है? फरमाया बासब ही व यजूस, इसमें कोई हर्ज नहीं है और यह बिल्कुल जायज। यानी यह नहीं कहा कि चादर उतारते वक्त इतनी एहतियात करो कि चादर को इतना आगे करो चेहरे से और इस तरह से उतारो कि वो चेहरे से मस ना होने पाए, चेहरा वैसे हराम है, चादर अगर उतारी और दोबारा पहनी। दूसरा सवाल जो मर्दों और औरतों दोनों के काम का है, लेकिन चादर के हवाले से ये पेश खाली औरतों को आता है, हां मर्दों को भी पेश आता है लेकिन वो भी चादर नहीं, वो आम जिंदगी, वो ये कि हराम की हालत में बाल तोड़ना हराम। अब यह है कि चादर उतारते वक्त सर पर से चादर उतरती है, 99% खवातीन का ये मुशाहिदा और तजुर्बा होगा कि जब चादर उतारी जाती है तो एक आध बाल टूट जाता है। और बहुत हम गुंजाइश करें कि भाई पहली दफा चादर उतार रहे थे तो क्या मालूम, दूसरी दफा तो पता चल गया। तो अब सवाल यह है कि अगर एक खातून को मालूम है कि चादर उतारूं तो चादर उतरते हुए बाल टूट जाएंगे, जो एहराम में हराम है, चाहे एक बाल तोड़े चाहे सैकड़ों, तो क्या फिर भी यह चादर उतारी जा सकती है, क्योंकि पता है कि इसकी वजह से एक हराम काम हो रहा। फरमाया चादर उतारने में जो बाल टूटते हैं वो बिल्कुल इजाजत है, वो कोई गुनाह नहीं। अब ये मसले सरसरी आप सुनेंगी लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो अंदाजा होगा ये कितने अहम मसले। अब आइए, ये दो मसले तो चूंकि एक आम मसला चल रहा था कि एहराम की चादरें मर्द और औरतें दोनों को पहनने के बाद, नियत के बाद, तलबिये के बाद उतारने की इजाजत। खवातीन के लिए दो टेक्निकल मसले आ गए कि बाल टूट जाते हैं, चेहरा छुप जाता है, उसका जवाब आ गया। मगर ये जो दो टेक्निकल मसले आए, ये आए इसलिए कि ये पेज नंबर 5, जैसे ही आपने एहराम पहना, क्या मतलब तलबिया पढ़ा, वैसे ही आप पर बहुत सारी चीजें हराम हो गई, उनकी वजह से ये मसले पेश आए। अब ये जो चीजें हराम हुई इनकी एक लिस्ट पेज नंबर 5 पर भी है और चार्ट पर बोर्ड पर भी है। जैसा कि एक जुमला मैंने अभी कहा था कि यह लिस्ट तमाम मराजे की किताब में मुख्तलिफ अंदाज से, मैंने इसको चेंज किया, मैंने इसमें अपना तजुर्बा शामिल किया, यानी जो चीजें पेश आती हैं वो पहले लिखी, जो चीजें हाजियों को पेश नहीं आती। मसलन तमाम मुश्तहदीन की किताब में कुलैनी से लेकर सिस्तानी तक एहराम की हराम चीजों में सबसे पहले आएगा शिकार करना, अहादीस की तमाम किताबों में सबसे पहले आएगा शिकार, मासूमीन के वाकयात में सबसे ज्यादा यह वाकया पेश आएगा कि लोग आके मौला से सवाल करते हैं कि मौला एहराम में मैंने शिकार कर लिया। आज पता नहीं कितने हज उम्रे मैंने किए, मसले उम्रे में भी से एक वाकया पेश नहीं आया कि अपने किसी मोमिन ने एहराम में शिकार किया, क्योंकि आजकल मुमकिन ही नहीं। जो सबसे पहला, सबसे अहम, सबसे ज्यादा पेश आने वाला मसला इमाम के जमाने में था, आज इतना कम कि अगर 100, 150, 200 मरतबा मैंने एहराम वाले लोगों की मदद की, एक वाकया एक, तो अब ये शिकार को मैंने सबसे आखिर में कर दी। तो ये पूरी लिस्ट इस तरह बनाई गई कि जो ज्यादा जरूरी यानी पेश आने वाले मसले, हो सकता है 20 साल बाद दुनिया बदल जाए, जो आज ज्यादा पेश आ रहे हैं वो कम हो जाए, कम वाले ज्यादा हो जाए, अभी की बात कीजिए। आइए इस चार्ट की मदद से एहराम का सबसे अहम मसला शुरू किया जाए, बल्कि एहराम ही नहीं, बहुत से लोग पूरे हज से डरते इस वजह से, या अगर लफ्ज सही ना हो तो इसको चेंज करके पास्ट टेंस कर दें, लोग हज से डरते इस वजह से थे कि हज का दिल तो चाहता है कदम कदम के ऊपर उसके अंदर पाबंदियां हैं और जरा सी कोई गलती कर दी तो बकरे वाजिब हो। बकरों का डर इतना होता था कि अल्लाह का डर कम हो जाता है, बकरों का डर बढ़ जाता। मसलन एहराम की हराम चीजों में एक पहले भी थी और अभी भी है, पहले कम पेश आती थी, आजकल बढ़ गई, आईना देखना। आज की दुनिया ऐसी है कि मिरर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, इमाम के जमाने में तो शायद एक भी रिवायत नहीं मिलेगी आईना देखने की, यानी किसी ने अपना वाकया पूछा हो। और आज सबसे ज्यादा मसला आईने का आएगा। मौलाना हम बस में बैठे हैं, ड्राइवर के सामने आईना था, उस पर निगाह पड़ गई। मौलाना हम लिफ्ट पे ऊपर जा रहे थे, लिफ्ट में आईना था, उस पर निगाह पड़ गई। मक्के की सड़क पे तबाह कर रहे थे, सामने पूरी बिल्डिंग ग्लास की बनी हुई है, नजर आ गया, कदम कदम पे आईना। आईना देखना गुना, लेकिन अगर कोई आईना देखे तो उस पर कोई कफारा नहीं, बकरा नहीं। लेकिन जिनको नहीं पता लोग घबरा भी आते, मौलाना मौलाना गजब हो गया, एहराम की हालत में हमने आईना देख लिया, कितने बकरे होंगे? हमने कहा कोई बकरा नहीं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे गुनाह तो है, फेले हराम तो किया, फेले हराम पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, क्यों? बकरे से बच गए। अल्लाह की तो कोई बात नहीं है, देख लिया जाएगा। तो ये जो एक टेंशन लोगों को था बकरे का, खौफ खुदा कम, खौफ बकरा ज्यादा। अब इतने सालों से मैं लोगों को हज भी करवा रहा हूं और उम्रे भी मैंने बहुत से ग्रुप्स को करवाए। हाजी और उम्रा करने वालों ने मुझे दुआएं नहीं दी, सही मानों में मुझे बकरों ने दुआएं दी। इतने बकरे मैंने कम कर दिए लोगों के कि पहले जो लोग समझते थे कदम कंधे पे बकरा है, तो बता दिया कि नहीं, ये गलतफहमी है, बकरे इतने वाजिब नहीं। खुदा मालूम कितने बकरे और बकरियों की दुआओं के नतीजे में इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन आइए पहले देखे तो सही कि वो क्या चीजें थी जिनका इतना डर था। चीजें वो अभी भी पेश भी आ रही, और आपको हज में पहला ही मरहला यह है कि इनका ख्याल करना। यह चार्ट है वो अफआल या वो काम जो एहराम की हालत में हराम, यानी इनकी वजह से एहराम को एहराम कहते हैं। तलबिया पढ़ते ही 26 चीजें ऐसी हैं जो हराम हो गई। कुछ पहले से हराम थी जैसे झूठ बोलना, इनका गुनाह बढ़ गया। इन 26 में से 20 चीजें मर्दों और औरतों दोनों के लिए हराम। चार चीजें सिर्फ मर्दों के लिए हराम है, दो चीजें सिर्फ औरतों के लिए। चार्ट नजर आ रहा है तो चार्ट को देखिए, चार्ट नजर नहीं आ रहा तो जो बुकलेट है उसको देखिए। जैसा कि मैंने कहा था कि इन 26 में से 20 चीजें जो दोनों के लिए हराम, उसमें जो चीजें आजकल ज्यादा पेश आती हैं उनको हमने पहले लिखा है। नंबर एक, बदन पर तेल मलना। अब ये जो लफ्ज तेल है, ऑयल, इसमें तमाम क्रीम आ जाती हैं, हर किस्म के लोशन आ जाते हैं, वैसलीन, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। बदन पर बगैर मजबूरी के एहराम की हालत में तेल मलने की इजाजत नहीं, बल्कि एहराम से पहले इस तरह का तेल मलना कि एहराम के वक्त उसका असर बाकी हो, उससे भी अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो आजकल की जिंदगी में खासतौर पर ख्वातीन का जो कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है उसके अंदर ये लोशन और क्रीम का इस्तेमाल इतना ज्यादा। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी कहा और आज भी तकरीर के शुरू में एक जुमला कहा था कि 40 दिन का हमारा हज है लेकिन 40 दिन का एहराम नहीं। एहराम, पहला एहराम जो हम मदीने से आगे पहनेंगे वो एक दिन का, फिर हज के दूसरे हिस्से में जो एहराम है वो दो दिन का है, कभी कभार ट्रैफिक जैम होता है तो वो तीन दिन का होता है। तीन और एक चार, टोटल 40 में से चार दिन वैसे एहराम है। फिर मक्के के कयाम में जो आप अपने और मरहूमीन के लिए कुछ बोनस में उमरे करना चाहें वो चार चार छह छह घंटे का एहराम। तो ये चीजें मुश्किल जरूर है, खास तौर पर दो दिन वाले हज में, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि दो दिन आदमी अगर तेल न लगाए, क्रीम न लगाए, लोशन न लगाए तो कोई कयामत नहीं टूट पड़ेगी। हां, मसला पेश आता है उन खवातीन के लिए जो पीरियड में होने की वजह से उनका उम्रा 8 दिन का हो जाता, क्योंकि वो एहराम पहन के मक्के में आएंगे। याद रखिए, मक्का शहर में बगैर एहराम के दाखिल होना ही गुनाह। एहराम पहन के आएंगी मगर बाकी वाजिबात, खाने खुदा का तवाफ वो नहीं कर सकती जब तक के पाक ना हो। तो इतनी देर तक उनका एहराम चलेगा, नहा सकती हैं, हाथ मुंह धो सकती हैं, अपने ड्रेस रोजाना चेंज कर सकती हैं, मगर कोई क्रीम, कोई लोशन, चाहे कितनी ही उलझन और बेचैनी क्यों ना हो रही, उनके लिए यकीनन ये मसला है। लेकिन क्या करें, वाजिबात वाजिबात है, नंबर एक। दूसरी चीज जो एहराम में हराम है वो है बाल उखाड़ना या बाल तोड़ना। जो मसला अभी औरतों के चादर उतारने में गुजरा, लेकिन ये बाल उखाड़ने का मसला उस लिस्ट में है जो औरत मर्द दोनों के लिए कॉमन है। तो मर्द के लिए भी बाल तोड़ना या उखाड़ना हराम है और औरत के लिए। और खुद ब खुद जो बाल टूट जाए, जैसे आप सोए उठे तो देखा बिस्तर पे टूटे हुए बाल हैं, आपने नहीं तोड़े, उसकी उसकी तो इजाजत क्या मतलब, यानी वो तो आपका अमल ही नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि बाल तोड़ने या बाल उखाड़ने वुजू और गुसल की वजह से, गुसल से मतलब गुसले शरई, अगर बाल टूटे अब पहले से पता, जैसे अभी मैंने मिसाल दी आप सोते वक्त बाल टूट गए वो तो माफ है, लेकिन वुजू आप कर रहे हैं और आपको पता है कि जब भी मैं चेहरा धोता हूं तो दाढ़ी के कुछ बाल जरूर टूटते हैं, जब भी मैं सर का मसा करती या करता हूं तो कुछ बाल जरूर टूटते हैं। अब मसा अहम है कि इहराम अहम? कल भी एक आखिर में एक जुमला मैंने कहा, नमाज हज से ज्यादा अहम। ये दूसरी बात है कि जो जोश लोग हज में दिखाएंगे वो नमाज में नहीं दिखाते। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि चूंकि मैं मजलिसें भी पढ़ता हूं ना, तो मेरी जबान जो है ना वो मुझे फिसला के कहीं ले जाती है, मौजू बदल जाता है, तो मैं वापस आता हूं। मसा अहम है इहराम से, चुनाचे मसा की वजह से जो बाल टूटेंगे पहले से पता है जरूर टूटेंगे वो माफ है। यही मसला गुस्ल का है। अगर आप पर इहराम की हालत में गुस्ल वाजिब हो गए, एक तो औरतों के पीरियड का मसला था वो अलग, लेकिन मर्दों के हवाले से जो बाज औरतों को भी पेश आ सकता कि जैसा कि आपने सुना कि मीकात से आते ही आप सीधा उमरा नहीं करते, बिल्डिंग में आके कुछ देर आराम करते हैं, थोड़ी देर सोए, गुस्ल जनाबत वाजिब हो गए, इससे इहराम नहीं टूटेगा। बस यह है कि हरम जाने से पहले आपको गुस्ल जनाबत करना, मालूम है कि बाल टूटे वो वाजिब गुस्ल है, उसमें जो बाल टूटे माफ नहीं। वाजिब भी मैं गलत कह गया, सुन्नत गुस्ल आपको करना है इत्तेफाक से जुमे का दिन, या यह कि खुद खाने खुदा की जियारत के लिए गुस्ल मुस्तहब। उमरा तो आप कर ही रहे हैं लेकिन उसके लिए खाने काबा तो देखना पड़ेगा ना, आपने कही एक बैठे बिठा है सवाब मिल रहा है, इहराम की हालत में नहा सकते हैं और उसमें जितने भी बाल टूटे वो माफ। लेकिन लेकिन अगर वो इस्लामी गुस्ल नहीं, इस्लामी गुस्ल वाजिब और सुन्नत दोनों की इजाजत, इस्लामी नहीं यानी क्या मतलब, 12 घंटे से आप सफर में हैं, पसीने पसीने हैं, गर्द गुबार है, दिल चाहता है कि फ्रेश होने के लिए नहा लो खाली, जो आमतौर पे लोग बाथ लेते हैं, उसमें अगर आपको पता है कि बाल टूटेंगे तो वो जायज नहीं। और फिर दारो मदार है बदन का वो हिस्सा, नहाना आमतौर पे जो शावर लोग लेते हैं या बाथ जो लोग लेते हैं, अगर आपको पता है कि सर के बाल टूटते हैं बदन के नहीं तो सर धोना जायज नहीं, बदन धो ली। आपको पता है कि सीने तक के बाल टूटते हैं उसके नीचे नहीं तो यहां तक के लिए यहां हराम रहेगा, नीचे धो ली। वो नहाना धोना ममनू नहीं, बाल नहीं टूटना चाहिए। अब इसमें अगर एक केस ये बना जो जरा मुश्किल है लेकिन अगर बन गया कि एक आदमी कहे कि मुझे नहीं पता कभी बाल टूटते कभी नहीं टूटते, वैसे तो सारी जिंदगी आदमी नहाता धोता है उसको मालूम है, लेकिन अगर कहे मुझे नहीं मालूम, हां कभी कभी बाल टूटते भी हैं नहाने से, कभी नहीं भी टूटते, तो उसको इजाजत। फिर अगर टूट जाए तो ये वाला नहाना जायज था, इसके बाद नहीं नहा सकता जब तक के उम्रा पूरा ना करे। तो बाल उखाड़ना जानबूझकर हराम है, सिर्फ वुजू और गुस्ल में अगर पता भी है कि टूटेंगे बाल तो उसकी इजाजत। सोते वक्त जो बाल टूटेंगे तो यह नहीं है कि फिर सोइए ही नहीं उम्रा पूरा होने तक, नहीं सो सकते। खवातीन की चादर का मसला हो गया। अब इसमें सिर्फ एक आखिरी मसला बचा, लेकिन वो आखिरी मसला अभी नहीं बता रहा, वो जब ये चार्ट कंप्लीट होगा तब बताऊंगा, क्योंकि 20 हराम चीजों में से 4 पर ब्लैक कलर के सर्किल बने, उसकी वजाहत चार्ट के आखिर में है जो आपके हाथ में, लेकिन ये चार्ट पूरा हो जाए तो ब्लैक सर्किल को और समझाता हूं, बाल उखाड़ना। तीसरी चीज जो हराम है वो है खुशबू का इस्तेमाल। मगर इस मसले के दो हिस्से हैं, एक